Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse number 17 and 18. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथ वितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। सातवां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, श्लोक नंबर 17। कृपया भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽध्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशेष्यति प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एकभक्ति विशेष्यति प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः शब्दात् तेषाम् अर्थात् उनमें से, उनमें से तो किन में से, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 16 में बताया, चतुर्विधा भजन्ते माम् जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने कहा कि चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान ने इनको सुकृतिनो कहा है, अर्थात ये पुण्य आत्मा है, शुभ कर्म करने वाले हैं। इसका रिजल्ट क्या निकला कि वो भगवान की शरण में गए, इधर उधर भटकने की बजाय वो डायरेक्ट से भगवान के पास गए, अर्थात वो सुकृतिनो है। कौन कौन है? आत यानी दुखी, जिज्ञासु यानी जिनको बहुत ज्यादा जानने की, ज्ञान की जिज्ञासु होते हैं, और अर्थार्थी अर्थात जिनको बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है, या ज्ञानी और ज्ञानी। ये चार प्रकार के लोग आते हैं भगवान की शरण में। तो आते तो हैं, भगवान तो सबको सुकृतिनो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता रहे हैं कि उनमें से ये चार हैं, उनमें से ज्ञानी, जो ज्ञानी है ना, अब देखो आत जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चार है ना, तो भगवान कहते ज्ञानी वो वाला जो नित्य युक्त, नित्य युक्त मतलब सदैव लगा रहता है किसमें, एक भक्तिर विशिष्यते, जो विशिष्ट भक्ति में, मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है, दूसरी की ओर नहीं देखता। ऐसा नहीं है कभी किसी के दरवाजे पर जाए, कभी किसी के यहाँ पर जाए, कभी किसी देवी देवता के पर नहीं, उसको ज्ञान हो गया है कि मैं भगवान हूँ और वो मेरे पास ही आता है। भले ही वो शुद्ध भक्त नहीं है, मुझसे प्रेम नहीं करता है, कोई संबंध निर्माण नहीं किया, लेकिन उसे पता है कि मेरी शरण में आना ही जीवन का लक्ष्य है, तो वो आ गया है। और वो अब क्या करता है, एक भक्तिर विशिष्यते, वो एकमात्र भक्ति करता है। तो भगवान कहते हैं प्रियो ही, प्रियो मतलब अति प्रिय है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। कौन? ज्ञानी, जो ज्ञानी है, ज्ञानी। भगवान कहते हैं प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, अत्यधिक प्रिय, अत्यर्थम मतलब बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। और अहम, मैं सच मम प्रिय, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ। मतलब अनुवाद, इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अहम सच मम प्रिय और वह मुझे प्रिय है, वो मुझसे प्यार करता है। तो भगवान ने पहले ही कह दिया कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि हम, कि वो क्योंकि सारे सहारों को छोड़कर मेरे पास आया है और मुझसे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, इसलिए वो मुझे ज्यादा प्रिय है। अब यहाँ पर ये बात समझनी है, देखो ज्ञानी दो तरह के होते हैं। एक को ये ज्ञान होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक जो है वो कण कण में व्याप्त है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई फेस नहीं है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, निर्गुण है, निर्विशेष है। ये भी तो ज्ञानी होते हैं जो निर्विशेष आदि होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन ज्ञानियों की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर उन ज्ञानियों की बात की जा रही है जिन्हें कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है। देखो भगवान कहते हैं प्रियो ही अज्ञानी वो जिसे जो मुझे प्यार करता है, वो ज्ञानी नहीं जो मुझे प्यार नहीं करता, जो मुझे मानता नहीं है, जो मेरे स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, उसकी बात नहीं कर रहे। भगवान कहते हैं कि इनमें से वो परम ज्ञानी जो शुद्ध भक्ति करता है और वो मेरी भक्ति में लगा रहता है और मैं उसे बहुत मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त आत जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। यानी कि अभी तक ये शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन ये अगर भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमशों से मुक्त हो जाए तो ये शुद्ध भक्त बन सकते हैं। अब ये कौन सी ज्ञानी जो होता है ना, उसको भी एक इच्छा होती है और भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की। अभी तक अब देखो शुद्ध भक्ति की बात जो श्रील प्रभुपाद जी ने की थी, पहले हमने पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक 1.1.11 में, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माध्यनावृतम। उसमें ज्ञान और कर्म सब कुछ नहीं होना चाहिए, ज्ञान भी नहीं होगा कर्म भी नहीं होगा। मतलब अब अगर आप भक्ति भी करते हो ना, तो भक्ति आप किसके जरिए करोगे? भक्ति भी तो एक कर्म है ना। आप देखो कार्य करोगे, भगवान के मंदिर को साफ करोगे, भगवान के लिए भोजन बनाओगे, भगवान के लिए वस्त्र बनाओगे, भगवान के लिए और कोई सेवा करोगे, भगवान के लिए फूलों के ना मालाएं बनाओगे, तो ये कर्म है ना। और प्लस आपको ये भी याद होगा कि कृष्ण भगवान है, ये भी ज्ञान भी होगा आपको कि मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन ये ज्ञान और कर्म तो बहुत ज्यादा आवश्यक है भक्ति में भी आपको करने। लेकिन जब आप ये दोनों ज्ञान और कर्म जब तक आप कृष्ण से प्रेम किए बगैर करते हो ना, तब तक वो कर्म बन जाते। कर्म मतलब जिसका आपको फल भुगतना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सब काम कर्म बन जाता है। आप अगर भगवान की खुशी के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के अनुसार या फिर सकाम कर्म के अनुसार कोई कार्य करते हो तो वो कर्म बनता है। लेकिन यदि वही कार्य वही सेम कार्य आप केवल इस भावना से करते हो कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, बस यही इच्छा होती है, इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं कृष्ण भावना, और इसको कर्म नहीं बोलते, इसको कहते हैं भक्ति। ये होती है वास्तविक भक्ति, जिसमें जो भी कर्म होता है और जो भी ज्ञान होता है वो केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मैं अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम जिज्ञासु हैं, हम ढूंढ रहे हैं क्या है क्या नहीं। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कृष्ण ये चाहते हैं कि आप शास्त्र पढ़ो और इस मेरे ज्ञान को आप सबको स्प्रेड करो, सबको बताओ दुनिया में, आप तो ना मेरे ज्ञान के बारे में, मेरी लीलाओं के बारे में, मेरे महानता के बारे में सबको बताओ। तो हम शास्त्र पढ़ते, बाकी एक भक्त को ज्ञान कर अर्जित करने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि भक्त जो है वो भक्ति करता है, उसी से कृष्ण संतुष्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर वो भगवान सोचेगा, कोई अगर जैसे यशोदा मैया देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वो कृष्ण से प्रेम करती थी, भगवान के लिए वो काफी है, कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं। उसी तरह गोपियां, उन्होंने कोई ज्ञान की डिग्री हासिल नहीं की थी, लेकिन वो कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण की सर्वोच्च भक्त कहलाई। इसका मतलब है कि जो शुद्ध भक्ति है वो ज्ञान और कर्म से बिल्कुल भिन्न होती है, उनके अंदर ज्ञान और कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम। और किया क्यों जाता है, जो भी आप कार्य करते हो भक्ति में क्यों किया जाता है? अनुकूलेन कृष्णानु, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। जो भी भक्त करता है उसका एक ही ध्येय होता है, एक ही गोल होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि मैं इस कार्य से कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो वो कार्य भक्ति बन जाता है। तो यहाँ पर शीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ज्ञानी ये सब जो चार आए हैं आज जिज्ञासु अर्थाती तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वह भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। क्योंकि जब तक जीव के हृदय में इच्छा है ना तब तक शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो ज्ञानी है वो परम सत्य को जानता है, अब वो उसके अंदर वैसे ही भौतिक इच्छाएं नहीं है तो फिर क्या होता है, वो डायरेक्ट से शुद्ध भक्त बन जाता है, खाली भक्ति के भक्तों के संपर्क में आता है और शुद्ध भक्त बन जाता है। लेकिन जो दूसरे चार हैं उनके अंदर क्योंकि अभी तक भौतिक इच्छाएं हैं इसलिए उन इच्छाओं को खत्म करने के लिए समय लगता है, लेकिन इसके अंदर तो वैसे ही इच्छाएं है ही नहीं तो डायरेक्ट से वो शुद्ध भक्त बन जाता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत खास बात बता रहे हैं कि इन चार वर्गों में से भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथन अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। अब इनमें से जो भक्त ज्ञानी है ये सारे चारों भक्त अगर इन सबको मिश्र भक्त कहा जाए या अशुद्ध भक्त कहा जाए तो आए तो है ना भगवान के पास, इन्होंने सुकृति की पूंजी को इतना एकत्रित किया कि भगवान के पास आने के योग्य हुए। उनमें से जो ज्ञानी है और भक्ति करता है भगवान की, भक्ति में लगा हुआ है, भगवान ने कहा है तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। इस बात को हमें क्लियर समझना चाहिए कि भगवान उस ज्ञानी की बात नहीं करते हैं जो कि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं जो कि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और जानता है कि भगवान की भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य, ज्ञान भी है और भक्ति भी करना है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। सबसे पहले जब जीव ज्ञान की खोज करता है तो उसे एक बात समझ में आती है, पहला जब ज्ञान के अंदर आपने कदम रखा ना, पहला स्टेप आपको ये पता चले, एक मनुष्य को ये पता चल जाए कि ये भौतिक शरीर मेरी आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, इस भौतिक शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं वास्तव में आत्मा हूँ, ये भौतिक शरीर तो क्षय होने वाला है, वस्त्र की तरह है, इसे मुझे इसमें इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए, ये पहला स्टेप है ज्ञान का। तो श्रीला प्रभुपाद जी इसी के विषय में बोल रहे हैं कि ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि इसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है और अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। अब और भी ज्यादा वो अगर ज्ञान में उन्नति करता है ना, पहले उसे ये पता चलता है मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, फिर उसको आगे पता चलता है कि संसार के प्रत्येक कण में भगवत वास है, यानी कि भगवान है वो निर्विशेष है, उसका कोई रंग नहीं कोई रूप नहीं, वो कण कण में व्याप्त है, यानी कि वो निराकार ब्रह्म के विषय में वो जानना शुरू करता है। फिर जब वो थोड़ा उसका ज्ञान और भी ज्यादा अधिक होता है तब वो सोचते हैं कि नहीं नहीं वो खाली निराकार नहीं है, उसका एक आकार है परंतु वो जीव के हृदय में परमात्मा की सूरत में रहता है। फिर वो योग साधन करता है कि उस परमात्मा के, मतलब पहले ज्ञानी होता है जो कि निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, फिर परमात्मा के पास आता है योग में और उसके बाद जब वो पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। अब वो भी ज्ञानी है जो ब्रह्म साक्षात्कार में तक पहुंचा है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार के बाद जब वो पूर्ण शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति, यानी उसे फिर ये इस बात का ज्ञान होता है, इस बात में ये विश्वास रखने लगता है कि मैं वास्तव में भगवान का दास हूँ, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेन नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण की दासत्ता ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य, मैं किस तरह से कृष्ण को प्रसन्न करूँ यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य। तो फिर क्या करता है वो नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है उसे। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से अब चाहे वो किसी भी भगवान के पास किसी भी पर्पस में आए हों, चाहे आर्थ हो, जिज्ञासु हो, धन की इच्छा रखने वाले हो तथा ज्ञानी हो, वो जब शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो स्वयं ही शुद्ध हो जाते हैं। बस वो आहिस्ता आहिस्ता भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो धीरे 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 उनके हृदय के अंदर जो मलिनता है वो खत्म हो जाती है और वो शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को ईश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यधिक प्रिय है। अब शुरू शुरू में जाहिर सी बात है ये चारों आए और उन चारों में से भगवान बता रहे हैं कि भाई सब आए हो, आप सब सुकृति हो, लेकिन इनमें से ज्ञानी जो है, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, किसी वस्तु के लिए मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है बल्कि डायरेक्ट से मुझसे प्यार कर रहा है, इसलिए मैं भी उससे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान उसे अत्यंत प्रिय है, भगवान जो है और वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही मुख्य बात बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है जैसा कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं सकता। यानी कि फिर वो ज्ञान के अंदर इतना दृढ़ हो जाता है और जब भगवान की भक्ति करने लगता है, फिर उससे भौतिक इच्छाएं उसके हृदय से खुद ब खुद निकल, क्यों हो जाता है ऐसे? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में चैप्टर नंबर 2 में टेक्स्ट नंबर 59 में भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते के वैसे तो इंद्रियां भले ही कितना ही उनको इंद्रिय भोग से रोको, उनको अपने विषयों से रोको, लेकिन हृदय के अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बाकी रहती। लेकिन जब रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब उत्तम रस का आस्वादन हो जाता है, जब किसी को हाईएस्ट टेस्ट भक्ति का मिल जाता है, तो फिर रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, फिर ये भौतिक इच्छाएं जो है वो उसके दिल पर बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं डालती है बहुत, क्योंकि उसे भक्ति का आनंद आना शुरू हो जाता है। और फिर इस तरह से जब भक्ति का आनंद आना शुरू हो जाता है, तो भौतिक वस्तुओं की ओर ये दुख खत्म हो जाए, ये धन दौलत प्राप्त हो जाए, ये सब उसके पास भी नहीं आते। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सारे कलमश जो है वो उसे छू भी नहीं पाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत ही सुंदर भगवान उन व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं जो कि उनके पास आते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 16 में बताया कि चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो इसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण ज्ञानी के विषय में जोर दे रहे हैं कि ये तेषां ज्ञानी युक्ति युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। क्योंकि ज्ञानी को किसी वस्तु के लिए भगवान के पास ज्ञानी नहीं आता है, बल्कि ज्ञानी को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, बस वो आता है भगवान के लिए। उसका और कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो बस स्वयं को भगवत अर्पण करने के लिए और भगवान की सेवा करने में आनंद प्राप्त करता है, और भगवान भी उससे प्रेम के बदले में स्वयं अपने आप को उसे दे देते हैं और बोलते हैं भगवान भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। ये पवित्र संबंध है जिसमें आप किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते हो। वैसे तो कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए इस श्लोक को देखकर कि बाकी जो है जैसे आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, उनसे भगवान प्रेम नहीं करते। आगे भगवान बताएंगे उदाहरण सर्वे कि ये सारे उदाहरण हैं। वास्तव में ये सब ही सुकृति हैं, तभी भगवान की शरण में आए हैं। लेकिन क्योंकि ज्ञानी किसी भौतिक वस्तु के लिए नहीं आया है, इसलिए भगवान कह रहे हैं तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। जो ज्ञानी है वास्तव में उसे सिर्फ मेरी प्रेम, मेरा प्रेम मेरे पास खींच के आता है, इसलिए मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। जरा विचार कीजिए कि भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर खड़े हुए हैं और वहाँ पर युद्ध होने वाला है। उस समय अर्जुन को बोलते हैं, माय डियर अर्जुना, यदि कोई भी मनुष्य किसी भी उद्देश्य से मेरे पास आता है तो वो महान है। कोई किसी भी वजह से आता है, मैं अवश्य उनकी रक्षा करूंगा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है यहाँ पर कि अगर आर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी आएंगे तो मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। जैसे आर्थ के विषय में अगर हम कहें तो आर्थ की हमारे पास बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, शास्त्रों में उदाहरण है गजेंद्र का। गजेंद्र आर्थ अवस्था में भगवान के पास आए, बहुत दुखी थे वो। कितने सालों तक युद्ध कर रहे थे गजेंद्र मगरमच्छ के साथ। अब यहाँ पर हैरत की बात है ना, कोई व्यक्ति दो चार घंटे, 8 घंटे, 20 घंटे, 1 दिन भी यदि युद्ध करता रहे कंटिन्यूअस तो वो थक जाएगा, अधमरा हो जाएगा। लेकिन ये सालों तक युद्ध चल रहा था, कोई भी नहीं जीत रहा था। कभी गजेंद्र हाथी को जो है वो अपने पानी की ओर खींच रहे थे, तो कभी हाथी जो है वो गजेंद्र को खींच रहे थे। बहुत ही भयंकर युद्ध था और गजेंद्र जो है उसका पैर कंटिन्यूअस मगरमच्छ के दांतों में फंसा हुआ था। इतनी पीड़ा हो रही थी उसको, इतनी पीड़ा हो रही थी कि वो उससे छुड़ा नहीं सक रहा था, उस पीड़ा को अब बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। गजेंद्र का जो उसने पकड़ा हुआ था ना, गजेंद्र ने वो उसको इतनी तकलीफ दे रहा था, इतना कष्ट दे रहा था कि अब उससे असहनीय हो गया था। वास्तव में भक्तों, हम भी इसी तरह मगरमच्छ के मुख में फंसे हुए हैं। इस संसार में विभिन्न प्रकार के मगरमच्छ हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वास्तविक कोई क्रोकोडाइल आकर हमें पकड़ेगा तभी हम भगवान को पकड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें संसार में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक जीव को ग्रस्त किए हुए रहती हैं। मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, भौतिक प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। संसार में जब से जीव आया है कष्टों से घिरा हुआ है। ये कष्ट नहीं, ये मगरमच्छ हैं जो सदैव सालों तक हम उनके साथ युद्ध कर रहे हैं लेकिन थक कर भगवान को पुकारते नहीं है, सुकृति नहीं है। इसलिए भगवान का मुख हमारे हृदय में, वो भगवान जो गजेंद्र है उसकी तरह हमारी हृदय से पुकार नहीं निकल रही है। तो ये विभिन्न प्रकार के मगरमच्छ सदैव हमें कष्ट देते रहते हैं। गजेंद्र ने जैसे ही उन कष्टों से आर्त होकर भगवान को पुकारना शुरू किया तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। भगवान ने ये नहीं सोचा कि सारी जिंदगी तो इसने मुझे याद नहीं किया, सारी जिंदगी तो मजा कर रहा था, आज जब दुख पड़ा है तो मेरा ध्यान आया इसको। कितना खुद गर्ज है, कौन जाता है छोड़ो मरने दो से। भगवान ने इसे नहीं सोचा। भगवान ने ये सोचा कि मेरा दुखी भक्त संसार के कष्टों से दुखी होकर मेरे पास आया है। कृष्ण ने उसी समय गरुड़ को कहा, मुझे ले चलो मेरे भक्त के पास, वो मुझे पुकार रहा है। आप जानते हैं भक्तों, गरुड़ की गति जो है वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार तेज होती है। यानी जब कृष्ण गरुड़ के ऊपर बैठते हैं तो जैसी जिस स्पीड से कृष्ण की इच्छा बढ़ती है, ताकि मैं इस स्पीड से जाना चाहता हूँ, तो गरुड़ के अंदर वो सिस्टम फिक्स है कि उसी अनुसार उसकी गति तेज होती है। भगवान को और जल्दी पहुंचना होता है तो गरुड़ की स्पीड और तेज हो जाती है। भगवान को और भी तीव्रता से पहुंचना होता है कहीं तो गरुड़ की स्पीड और भी, यानी जैसा भगवान के हृदय के अंदर भाव आता है वैसी गरुड़ की स्पीड बढ़ जाती है। परंतु उस समय जब कृष्ण को गजेंद्र की रक्षा करने जाना था और गजेंद्र इतना आर्त स्वर में कृष्ण को पुकार रहा था, कृष्ण की इतनी तीव्र इच्छा हो रही थी उनके पास जाने की, इतनी तीव्र इच्छा हो रही थी कि भगवान इतना जल्दी वहां पर पहुंचना चाहते थे कि गरुड़ की उतनी स्पीड हो ही नहीं रही थी, गरुड़ इतना तेज चल रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान को ऐसा लग रहा था कि गरुड़ कितना मंद गति से चल रहे हैं। भगवान ने गरुड़ को वहीं छोड़ा, बोला इतना दुखी है मेरा भक्त, मुझे पुकार रहा है और तू इतना स्लो चल रहे हो। उसको वहीं छोड़कर भगवान आगे निकल गए। ये केवल एक स्टोरी नहीं है, यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं अपने भक्तों से। भक्त जब प्रेम से भगवान को बुलाता है तो भगवान ये नहीं सोचता कि इसने तो सारी जिंदगी कोई भक्ति नहीं की मेरी और आज दुखी होकर मुझे पुकार है तो मैं क्यों जाऊं। भगवान अवश्य आते हैं रक्षा करने के लिए। और उसके बाद है जिज्ञासु। अत्यंत सुंदर उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में जिज्ञासुओं का, वो है नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनि। अत्यंत जिज्ञासा करते थे अलग अलग ज्ञान के विषय में जानने के लिए, वो भगवान के विषय में सोचना चाहते थे, अनेकों प्रश्न करते थे जब भी किसी से मिलते थे तो प्रश्नों की, वो ये क्या है भगवान की सृष्टि, बहुत कुछ जानना चाहते थे। उस समय भी जब सूत गोस्वामी वहां पर आए थे बहुत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन जब एक शुद्ध भक्त के साथ किसी भी इच्छा, आपके हृदय में कोई भी इच्छा हो, यदि किसी शुद्ध भक्त के साथ आपकी भेंट हो जाती है, तो फिर इसी तरह से सूत गोस्वामी ने भागवत कथा सुनाते 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 अंत में उनको और कुछ नहीं सुनना था, बस कृष्ण लीला के अतिरिक्त और वो कुछ नहीं सुनना चाहते थे, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहते थे। इस तरह भगवान जो है वो हृदय के अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं भक्त और भगवान के संपर्क से आते आते वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और आगे है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिसको धन की इच्छा हो। और भागवतम में अत्यंत ही सुंदर दृष्टांत है महाराज ध्रुव का। ध्रुव महाराज भगवान के पास आए थे, भगवान से प्रेम नहीं था, लेकिन आए थे, वो चाहते थे कि मैं इतना बड़ा मैं राज्य प्राप्त करूं, मेरे पिता से भी महान राज्य मुझे प्राप्त हो, क्योंकि मुझे उस राज सिंहासन पर बैठने नहीं दिया गया, इसलिए मैं राज्य प्राप्त करना चाहता हूं, उसके लिए कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी मैं करूंगा, क्योंकि उनकी विमाता ने उनका अपमान किया था, तो इस अपमान को ना सहने के कारण और बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करने के कारण वो भगवान को या भगवान को भजने के लिए, भगवान से बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे थे। लेकिन क्योंकि उनका संपर्क हो गया नारद मुनि के साथ, नारद मुनि ने उन्हें भक्ति की विधि बताई, और जैसे जैसे वो नाम जप करते रहे करते रहे करते रहे, हृदय के अंदर जो भी कलमश थे वो सब समाप्त हो गए। भगवान ने उस समय ये नहीं सोचा कि इसको क्या ज्ञान है, ज्ञान व्यान तो इसके अंदर है ही नहीं, खाली अपने बाप से बड़ा राज्य मांगने के लिए आया है, छोड़ो इसको। नहीं, भगवान ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया कि भले ही तुम्हें राज्य प्राप्त करने के लिए मेरे पास आए हो, राज्य प्राप्त करने के लिए तुमने मेरी शरण ग्रहण की, लेकिन मैं हर वो वस्तु जो कि मेरे भक्ति की इच्छा होती है मैं उसे प्रदान करता हूँ। तो भगवान आए स्वयं और भगवान ने ध्रुव को बोला कि मैं तुम्हें इतना बड़ा राज्य दूंगा इस संसार का, और उसके बाद भी जब ये संसार का राज्य समाप्त हो जाएगा तो भी मैं तुम्हें ऐसा राज्य दूंगा जो शाश्वत है, ध्रुव लोक दूंगा तुम्हें। तब ध्रुव महाराज ने कहा कि कृष्ण मैं कितना अभागा हूँ, मेरी मति कितनी दुष्ट है कि आपके पास आया था मैं, जहाँ पर मुझे कृष्ण तुम्हारा प्रेम मिल सकता था, लेकिन उसके लिए जिज्ञासा नहीं कर रहा था मैं, बल्कि भौतिक एक छोटे से तुच्छ राज के लिए मैं तुम्हारे पास आया। मुझे कितना दुर्भाग्य है मेरा कि हीरे को छोड़कर कांच के टुकड़ों की ओर मोहित हो रहा था। मतलब भक्ति करते करते गुरु महाराज के हृदय से राज्य प्राप्ति की इच्छा स्वतः समाप्त हो गई और कहने लगे, स्वामी कृतार्थ हूँ हम वरम नवान से, आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, केवल आपकी कृपा पर्याप्त है। लेकिन भगवान ने उन्हें उनके ऊपर कृपा की और उन्हें राज्य प्रदान किया। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि चाहे भगवान के पास किसी भी इच्छा से जाते हैं तो भगवान अवश्य सहायता करते हैं और हृदय के कलमश को भी समाप्त करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसके हृदय में इच्छा नहीं होती है। उसके जैसे ज्ञानी कौन है, ज्ञानी की एग्जाम्पल कौन सी मिलती है भागवत में, चार कुमार शुरू से ही ज्ञानी थे, उनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, उनके हृदय में कोई वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। ये अलग बात है कि भगवान के स्वरूप को प्रेम नहीं करते थे, भगवान को जानते थे, ज्ञान था उनका, लेकिन भगवान के प्रति आकर्षण नहीं था। तो वो वैकुंठ की ओर जा रहे थे और द्वारपाल जय और विजय जो कि भगवान के द्वारपाल हैं, उन्होंने रोक दिया, उन्हें कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। जब चतुर कुमारों ने जब इनकी बात सुनी तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और कहने लगे, आप यहाँ वैकुंठ में रहते हो और आपके हृदय में इतना द्वेष है कि आप हमें भगवान से मिलने के लिए मना कर रहे हो, आप तो वैकुंठ के अधिकारी नहीं हो, इसलिए आप मृत्यु लोक में चले जाओ, राक्षस जाके बनो, राक्षस जैसी वृत्ति है तुम्हारी जो एक भक्त को भगवान से मिलने से रोक रहे हो आप। तब उस समय वैकुंठ नाथ जो के अंदर बैठे थे शिव शैया पर, तो उनको ऐसा लगा कि क्यों इतना बाहर से कोलाहल मच रहा है, क्यों इतना शोर आ रहा है। और भगवान जब बाहर आए तो उनके चरणों में लगी हुई तुलसी की सुगंध से और उनके गले में जो वैजयंती माला थी उससे और भगवान के नेत्रों के आकर्षण से चार कुमार के हृदय में भगवान की जैसी उस सुगंध, तुलसी की जो सुगंध है उनकी नासिका में गई, तो अपना सारा ज्ञान साइड में रख के भगवान की शुद्ध भक्त बन गए, भगवान के प्रति उनका प्रेम का आकर्षण हो गया। मतलब जैसे उनको भगवान के सानिध्य में लाया गया तो फौरन से शुद्ध भक्ति बन, क्योंकि हृदय के अंदर इच्छा पहले थी नहीं ना। लेकिन अगर हम लोग बहुत सारी इच्छाएं ले लेके भगवान के पास जाएंगे फिर क्या होगा, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तो सही, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, नाम जप करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, नियम को फॉलो करेंगे तो फिर भक्ति आएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है ना, कि अपनी इच्छाओं के प्रति आर्थ होकर, दुखी होकर या फिर जिज्ञासु होकर या धन को प्राप्त करने के कारण भगवान के पास आ तो गए, परंतु यदि शुद्ध भक्तों का संग नहीं किया, सही तरह से नियम को फॉलो नहीं किया और जब वस्तु प्राप्त हो जाए, भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाए, तो फिर वापिस से भगवान के भक्ति के अंदर नहीं आए, भक्तों का संग नहीं किया। और अगर वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई और किसी और व्यक्ति ने, क्योंकि अभी हमारा भगवान के प्रति ज्ञान तो है ही नहीं ना, तो कोई और व्यक्ति आके हमें बोले कि ये कि आप यहाँ भगवान के आगे सिर पटक रहे हो, कोई भौतिकतावादी का यदि संग मिल जाए और फिर वो बोलेगा कि तुम क्या कृष्ण की भक्ति में समय गंवा रहे हो, ऐसा करो फिलहाल ना देवी देवता की पूजा करो, वो तो और भी जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इतना धन देते हैं, इसने देखो भक्ति की उसकी कितना धन प्राप्त हुआ, उसने इसकी भक्ति की तो उसको इतना पुत्र भी प्राप्त हो गया, उसकी शादी भी हो गई, तो वो उसकी बात से बहुत जल्द सहमत हो जाते क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भक्ति, मेरी भक्ति में जो भी आते हैं वो सुकृतिनों हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि मैं कितना महान हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई भी पूजनीय नहीं है, पूजा के योग्य नहीं है, मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्वामी हूँ। अगर हम किसी भी भावना से भगवान के पास आते हैं तो वो भावना अच्छी है पर ज्यादा अच्छी नहीं है, भगवान महान है ये जानना ज्यादा आवश्यक है, ज्ञान रखना ज्यादा आवश्यक है और ये ज्यादा अच्छा है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में ये समझना चाहिए कि भगवान महान है, भगवान कैसे महान है, हमारे और भगवान के दरमियान क्या संबंध है, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाकी सब तो आते हैं केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो फिर हो सकता है जब उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो भगवान की भक्ति करना ही छोड़ दें। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये सब जो है वो सुकृतिनो है, परंतु तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एका भक्तिर्विशिष्यते, वो ज्ञानी जो भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि भक्ति करता है मेरी बस इसलिए कि प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, कि वो मुझसे प्रेम करता है और इसीलिए मेरी भक्ति करता है तो मैं भी उसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। इसी चीज को भगवान श्लोक नंबर 18 में भी बताएंगे, लेकिन ये फाइल बड़ा हो गया तो आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।